HIV. Bye, oh bye. Welcome to our Kalyanamitra retreat. I don't know what number Kalyanamitra retreat it is.
तो आप सबका मैं कल्याण मित्र शिविर पे स्वागत करता हूँ. मुझे पता नहीं कौन से नंबर का ये शिविर है.
There must be 20 or so that we've done.
तो शायद 20 शिविर अभी तक हमने किए होंगे.
And Chandrashil and I started doing these retreats because we wanted to help senior order members take more Kalyanamitra responsibility.
तो चंद्रशील और मैंने इसकी शुरुआत की इन शिविरों की श्रृंखलाओं की क्योंकि जो वरिष्ठ संघ सदस्य जो है उन्होंने कल्याण मित्रता की जिम्मेदारी उठानी चाहिए.
And our first idea was to talk quite a bit about how to be a Kalyanamitra to others.
और पहली बात यह है कि हम इस बात की शुरुआत करनी चाहिए कि कैसे हम कल्याण मित्र हो सकते हैं.
But we realized that before people can be Kalyanamitras, they have to have something to give others.
तो कल्याण मित्र होने के पहले हम लोगों के पास कुछ होना चाहिए औरों को देने के लिए.
People have to have some real understanding of Dhamma life and Dhamma practice.
लोगों को वाकई में धम्म जीवन का या आचरण का कुछ अनुभव होना चाहिए.
And of course, it's not that people don't have any understanding.
इसका अर्थ यह नहीं है कि लोगों को कुछ भी यानी समझ नहीं है.
But we felt that we all needed to look much more closely and deeply at what it means to practice the Dhamma.
लेकिन हमें बहुत गहराई से और करीबी से देखना चाहिए कि धम्म का आचरण करने का अर्थ क्या होता है.
Because we can't really be Kalyanamitras until that's very much alive in us.
तो हम तब तक कल्याण मित्र नहीं हो सकते जब तक वह बात आचरण और अभ्यास हम में अगर जिंदा नहीं है तो.
So our idea is that we just continue to explore this theme more and more over these next maybe years even.
तो यह जो श्रृंखला है आने वाले सालों तक शायद हमें ऐसी ही जिंदगी रखनी पड़ेगी.
Because if we're really dhammically alive ourselves, we don't have to make an effort to be a Kalyanamitra.
अगर हम धार्मिक पद्धति से अगर जिंदा है तो हमें फिर प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है.
Yes, there are things that we could discuss about being a Kalyanamitra.
तो चीजें कुछ है जिसकी हम चर्चा कर सकते हैं कल्याण मित्र होने के नाते.
But the main thing is that the lamp of the Dhamma is alive in you, and then you can help others to light it in them.
लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि धम्म का जो ज्योत है, धम्म ज्योत जो है, वो आप में जिंदा है और आपसे फिर और लोग वो ज्योत ले सकते हैं.
From his greater lamp, a lesser lamp we light within us.
तो उनके महाप्रदीप से हम हमारा दीप जलाते हैं.
And then when that lamp is a light in us, we can help others to light it in themselves.
और अगर कुछ लोग, अगर वह दीप हम में है, तो हम में से कुछ वो दीप लोग जला सकते हैं.
So that's our purpose, is simply to try to see exactly what it means to practice the Dhamma every day.
तो यही हमारा अर्थ है कि हर रोज धम्म आचरण का अर्थ क्या है, उसका मकसद क्या है.
And we'll follow our usual procedure.
तो जो भी हमारी प्रक्रिया है उसे हम यानी जैसी होती है वैसे हम करेंगे.
I'll try and illuminate a Dhamma principle for you each morning.
हर दोपहर को एक धम्म तत्व उजागर करने की, प्रज्वलित करने की मैं कोशिश करूंगा.
Then you'll meet in groups of five people or so.
तो पांच लोगों के गुट में आप मिल सकते हैं.
And simply discuss what I've said and how it relates to you.
और इसकी चर्चा कीजिए कि आपके साथ कैसा यह जुड़ा हुआ है.
This is not a philosophy class.
क्योंकि यह दर्शन शास्त्र का वर्ग नहीं है.
Yeah, we're looking at Dhamma principles so that we can see them in ourselves.
तो हम धम्म तत्वों को देखते हैं ताकि उसे हम अपने हृदय में देखें.
It's important to get clear what that principle is, of course.
तो यह महत्वपूर्ण है कि इस तत्व का अर्थ क्या होता है इसे जानना.
But then you need to see how it applies directly to you.
और फिर हमें देखना है कि कैसे प्रत्यक्ष रूप से हमें यह लागू होता है.
And we can help each other in those groups.
और फिर हम इस गुटों में एक दूसरे को मदद कर सकते हैं.
I feel those groups should be a bit challenging.
और मुझे ऐसे लगता है कि यह जो आपके जो गुट है यह थोड़े आह्वानात्मक होने चाहिए.
In a very friendly way, of course.
यानी बहुत ही मैत्रीपूर्ण तरीके से.
Out of genuine concern for the Dhamma.
यानी धम्म का एक वाक्य में जो लगाव है उसके साथ.
But we should be prepared to ask each other, what do you really mean?
लेकिन आप लोगों ने पूछना चाहिए अपने आप को कि इसका मकसद क्या है.
That sounds very good, but how are you actually applying that to yourself?
यह लगता बहुत अच्छा है लेकिन कैसे हम अपने आप को इसे लागू करते हैं.
And then if you know something about that person, you can ask questions. Well, you know, you say this, but what about that?
तो फिर आप सवाल पूछ सकते हैं कि ये तो ठीक है लेकिन इसके बारे में क्या.
You know, we've been trying to develop more and more of this sort of interaction between certainly senior order members.
तो इस प्रकार का जो संवाद है हम जो वरिष्ठ संघ सदस्य है उनके बीच लाने की कोशिश कर रहे हैं.
It's too late for pride.
क्योंकि अभी गर्व के लिए बहुत देरी हो चुकी है. अभी गर्व हम नहीं रख सकते.
If you die with pride, I don't know what will happen to you.
अगर गर्व के साथ अगर हम मरेंगे तो फिर पता नहीं फिर हमारा क्या होगा.
Sorry, not just you, me, we.
केवल आपकी बात नहीं मैं मेरी भी बात कर रहा हूँ.
Whatever pride we die with, well, that will affect what happens next.
तो जिस किसी भी अहंकार के साथ हम मरेंगे उसका निश्चित ही जो आगे होने वाला है उसके ऊपर असर होगा.
So it's time for us to set that pride aside and help each other to enter the stream of the Dhamma.
तो अभी यह यानी समय आ गया है कि हम उस अहंकार को बाजू में रखें और एक दूसरे को धम्म प्रवाह में प्रवेश होने के लिए मदद करें.
And we need each other.
और हमें एक दूसरे की जरूरत है.
You can't easily see yourself.
आप आसानी से अपने आप को हम देख नहीं सकते.
And others can see things in you that you can't see yourself.
और आप लोग अन्य लोग आप में देख सकते हैं जो आप अपने आप में नहीं देख पाते.
So we need to create that sort of vigorous positive critical interchange.
तो इस प्रकार का जो यानी एक दूसरे के बाद जो क्या कहते हैं कि योद्धिक तरीके से एक दूसरे को आह्वान करने का जो सम्मेलन है वो देख सॉरी हमें इस प्रकार का जो आह्वानात्मक व्यस्तता जो है अपने संवाद में लाना चाहिए.
That was a googly. So yeah, there needs to be that sort of interchange.
तो इस प्रकार का मतांतर हमें होना चाहिए.
If you're not ready for that, well, you know where Gaya Station is.
तो अगर हम इसके लिए अगर तैयार नहीं है तो आपको पता है गया स्टेशन कहाँ है.
Or you can go and just sit down by the Mahabodhi temple here.
तो आप महाबोधि मंदिर में जाके बैठ सकते हैं.
Or sit in a tea shop and drink tea.
या आप चाय की दुकान में जाइए और चाय पीजिए.
But yes, gloves off and open communication.
तो हमें क्या करना है कि अपने पंजे खोलने हैं यानी और हमारा जो संपर्क है वो उसे खुला करना है.
But in a very positive spirit.
लेकिन बहुत ही विधायक तरीके से.
I think this is our best tool for development.
मुझे ऐसे लगता है कि यह सबसे अच्छा हमारे पास तंत्र है विकास के लिए.
I think I can say in my own case that critical feedback that I've had from friends has been much more effective than the six element practice.
तो जो आलोचनात्मक मुझे जो फीडबैक मिले है मेरे दोस्तों से वह छह धातुओं के ध्यान से भी ज्यादा प्रबल साबित होती है मेरे लिए.
Of course, the six element practice gives me the background to receive that.
क्योंकि जो छह धातुओं का जो ध्यान है यह मुझे परिप्रेक्ष्य देता है या पृष्ठभूमि देता है उसे स्वीकारने के लिए.
So the groups are a practice, a dhamma practice.
तो हमारे जो गुट है वह अपने आप में आचरण है.
So that the pot comes to the boil.
तो जब वो जो घड़ा उबलने को आता है.
Otherwise we sit on the stove and we don't even light the flame.
तो हम क्या है स्टोव पे बैठते और उसे जलाते भी नहीं है.
So let's light each other's flame.
तो हम एक दूसरे को यानी क्या है इस प्रकार से जो ज्योति है वो जलाते.
Then we can come to the dhamma boil.
तो तब कहा धम्म उबलने लगता है.
And we won't continue the metaphor. So that's the second practice we'll be doing.
तो यह दूसरा आचरण है जो हम कर रहे हैं.
Then in the afternoon, Chandrashil will do his particular style of bringing you to the boil.
फिर दोपहर को चंद्रशील अपने तरीके से जलाएंगे.
And though that flame is very hot.
और वो जो ज्वाला है वो बहुत गर्म होगी.
So you'll all meet together with Chandrashil and in Marathi you'll have a very good time and you'll penetrate deeper into the Dhamma.
तो मराठी में चंद्रशील आपको मिलेंगे और वो भी काफी गहराई में भेदेंगे यानी धम्म को.
But all the time, don't forget what we're trying to do is see what it really means to practice the Dhamma.
तो हमेशा ही हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं कि देख रहे हैं कि धम्म का आचरण करने का अर्थ क्या है.
Then of course in the evening we go down to the Bodhi tree.
और बोधि वृक्ष को जाएंगे हम दोपहर को.
Because what happened under the Bodhi tree is what we're trying to make happen in our own lives.
तो जो कुछ भी बोधि वृक्ष के तले हुआ वही हम करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे अंदर होने की.
We may not be able to achieve full and perfect, we may not achieve full and perfect enlightenment in this life.
तो हम शायद पूरा जो सम्यक जीवन है उसे पाने के लिए शायद कठिन होंगे इस जीवन में.
Although it's possible.
लेकिन यह मुमकिन भी है.
But really every one of us should enter the stream of the Dhamma before we die.
लेकिन हम में से हर व्यक्ति धम्म प्रवाह में प्रवेश करना चाहिए हमारे मृत्यु के पहले.
It's perfectly possible.
यह पूरी तरह मुमकिन है.
And of course if we don't know what happens next time.
और अगर अब नहीं कर पाएंगे तो अगली बार क्या होगा हमें पता नहीं.
I've mentioned a number of times a conversation with Bhante about rebirth.
तो अक्सर कई बार मैंने भंते के साथ मेरे जो संवाद है उसकी मैंने चर्चा की.
But he said at the end of that conversation that yes, he knew he would be reborn because he believed in rebirth.
उन्होंने कहा कि मेरा पुनर्जन्म होगा क्योंकि मैं पुनर्जन्म पे विश्वास करता हूँ.
So I asked him because I knew you'd blame me if I didn't. Do you know where you're going to be born?
तो मैंने उनको पूछा कि क्या आपको पता है कि आप कहाँ आपका पुनर्जन्म होगा अगर आप मुझे दोष नहीं देते.
I didn't want to be like poor Ananda who didn't ask the Buddha to remain till the end of the kalpa.
तो अब मैं आनंद जैसा नहीं हूँ कि who what he asked?
He didn't ask the Buddha, will you remain till the end of the kalpa?
उन्होंने बुद्ध को पूछा नहीं कि क्या आप कल्पों तक रहेंगे क्या.
I didn't want to be remembered in the future as the person who didn't ask Bhante where he was going to be reborn.
तो मैं फिर ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहता कि आपने फिर क्यों नहीं पूछा भंते को कि आपका पुनर्जन्म कहाँ होगा.
Although I was pretty sure what he would say.
लेकिन मुझे पता था कि वो क्या कहने वाले.
I don't know.
उन्होंने कहा मुझे पता नहीं.
He said it could be anywhere.
वो कहते हैं वो कहीं भी हो सकता है.
But because there are more people in India and China, maybe it's more likely in India or China.
तो वो कहते हैं कि काफी लोग चाइना और भारत में, तो शायद मैं भारत या चाइना में ही आऊंगा.
But anyway, he said he didn't know.
लेकिन उन्होंने कहा मुझे पता नहीं.
But then he said something that really made me sit up.
लेकिन उन्होंने एक बात कही जो मुझे वाकई में यानी उससे मैं उछल गया.
He said that wherever I'm born, I'm sure I will find the Dhamma.
उन्होंने कहा जहाँ कहीं भी मेरा पुनर्जन्म हो मैं इस बात से पूरा पूरा मुझे विश्वास है कि मुझे धम्म मिलेगा.
Well, of course, if he's sure he'll find the Dhamma, presumably that means he'll be looking for it.
तो अगर वो धम्म को ढूंढेंगे या पाएंगे तो इसका मतलब वो धम्म को खोज रहे होंगे.
And if he's looking for the Dhamma, presumably that means that you could say he's entered the stream of the Dhamma.
और अगर वो ऐसा कहते हैं कि अगर मैं धम्म को खोज पाता हूँ तो शायद वे धम्म प्रवाह में होंगे.
Because only if that's happened can you be sure that you'll come back to it.
तो जब तक वह नहीं होता तब तक हमें आत्मविश्वास नहीं आता कि यही ये वाकई में मेरे साथ होगा.
And he said that anywhere you're born in the world today, the Dhamma is available.
वो कहते हैं कि आप कहीं पे भी इस दुनिया में आप पुनर्जन्म लो धम्म वहाँ मौजूद होगा ही.
It might be a bit difficult if you're born in Makkah, but
अब थोड़ा कठिन होगा अगर आपका जन्म मक्का में होता है तो.
But perhaps even Bhante could find the Dhamma from there.
लेकिन शायद भंत को वहाँ पे भी धम्म मिल सकता है.
And even if he was born in Varanasi, I'm sure he'd still find it.
और अगर वो वाराणसी में उनका जन्म होता है तो वो यानी उनको धम्म मिलेगा.
He's not far from Varanasi to Sarnath.
सारनाथ वाराणसी से दूर नहीं है.
But anyway, that's the condition we need to be in.
तो यह परिस्थितियां है जो जिसमें हम लोग चाहिए.
So we need to enter the stream of the Dhamma.
तो हमें धम्म के प्रवाह में प्रवेश करने की जरूरत है.
Which is at least the first stage of what the Buddha did under the Bodhi tree.
तो कम से कम पहला चरण जो बुद्ध ने बोधि वृक्ष के तले किया.
So we're going to the Bodhi tree not just to worship a god. तो well, not to worship a god at all.
हम बोधि वृक्ष में ईश्वर की पूजा करने नहीं जाते.
Yes, we'll get very positive feelings from being there.
निश्चित ही वहाँ जाकर हमें एक विधायक भाव आता है.
But we're mainly going there because what the Buddha attained, we too can attain.
हम वहाँ इसलिए जाते हैं कि जो बुद्ध ने प्राप्त किया उसे हम भी प्राप्त कर सकते हैं.
What the Buddha overcame, we too can overcome.
जो बुद्ध ने पराजित किया उसे हम भी पराजित कर सकते हैं.
So what the Buddha did under the Bodhi tree is what we need to be doing now in our lives.
तो जो बुद्ध ने बोधि वृक्ष के तले किया वही बात हमने अभी यहाँ अपने जीवन में करनी चाहिए.
So we're going to in these days concentrate on really understanding what the Buddha did.
तो हम इन दिनों इस बात के ऊपर एकाग्र होने जा रहे हैं कि बुद्ध ने वाकई में क्या किया.
And what that says to us.
और वो हमें क्या बता रहा है, क्या द्योतक यानी जिसका है.
Even if we are not able yet to do it, we need to understand what needs to be done.
भले ही हमने किया नहीं है लेकिन कम से कम हमें जानना है कि क्या करने की आवश्यकता है.
Even if you can't see the light of the sun, you need to be able to see the shadow cast by it.
अगर आप सूरज को नहीं देख पाते तो कम से कम सूरज से जो परछाई गिर रही है उसके उस तक तो भी हमने पहुंचना चाहिए.
Then you know which direction the sun is.
कम से कम वहां से हमें पता चलेगा कि किस दिशा से सूरज है.
So I'd like to make that our sort of collective purpose.
तो इस प्रकार का जो यानी एकत्रित प्रयास या उद्देश्य जो है वो हमने अभी करना है.
We're really theoretically clear about what the Buddha did.
सैद्धांतिक रूप से हम स्पष्ट है कि क्या बुद्ध ने किया.
And it's important to be clear in principle, in theory.
और यह महत्वपूर्ण है कि सैद्धांतिक रूप से या तात्विक रूप से हम स्पष्ट हो.
But that theory needs to be applied to our direct experience.
लेकिन वह जो सिद्धांत है उसे हमें हमारे प्रत्यक्ष जीवन में लगाने की आवश्यकता है.
In the Buddha Dhamma, there's no theory for theory's sake.
बौद्ध धर्म में सिद्धांत केवल मात्र सिद्धांत के लिए नहीं है.
A theory is all for practice sake.
ये सारे सिद्धांत हमारे आचरण के लिए ही है.
Yes, and theory is very important.
और जो सिद्धांत है यह बहुत महत्वपूर्ण है.
Without theory, we don't know what we're doing.
और सिद्धांतों के बगैर हम क्या करेंगे हमें पता नहीं होता.
So practice without theory is just walking around in the dark.
तो सिद्धांतों के बगैर अगर हम चलेंगे तो फिर वो अंधेरे में चलने जैसे होगा.
But theory without practice is just words.
लेकिन theory without practice, आचरण के बगैर जो सिद्धांत है वो केवल शब्द हो जाएंगे.
So we need the correct relationship between the two.
तो इसलिए जो उचित संबंध है इन दोनों के बीच हमें चाहिए.
It is very very important in the Buddha Dhamma.
यह बहुत महत्वपूर्ण है बुद्ध धर्म में.
So we're going to get the theory clear, but we need to see that actually in our own direct experience.
तो हम सिद्धांत के प्रति स्पष्टता लेते हैं लेकिन हमें उसे प्रत्यक्ष अनुभव में ही झांकना होता है, देखना होता है.
And see how to work with it.
और हमें देखना है कि कैसे हम इसके साथ काम करें.
Not just in meditation.
केवल ध्यान में नहीं.
Meditation extremely important.
ध्यान अत्यंत महत्वपूर्ण है.
But unless you're applying it in every area of your life, it's useless.
लेकिन जब तक आप इसे अपने जीवन के प्रत्येक हिस्से में नहीं लगाते हैं यह निरुपयोगी है.
So yes, I hope that we come away with a much clearer idea of what the Buddha actually did under the tree.
तो शायद हम इस बात से अभी स्पष्ट होंगे कि क्या वाकई बुद्ध ने बोधि वृक्ष के तले किया.
And a much clearer idea of what that directly means about our own immediate experience.
और यह हमारे लिए स्पष्ट होगा कि हमारे प्रत्यक्ष अनुभव में इन सिद्धांतों का या इस आचरणों का अर्थ क्या है.
We're not going to be doing so much meditation.
हम बहुत ज्यादा ध्यान नहीं करने वाले हैं.
Yes, we'll be meditating in the morning.
हम सुबह ध्यान करेंगे.
We'll be meditating under the tree.
और वृक्ष के तले हम ध्यान करेंगे.
But what we're going to be doing in communication is very effective form of Dhamma practice.
लेकिन क्या हम करने वाले हमारे संवाद में काफी प्रभावी धम्म का आचरण.
As long as you're constantly looking at your own experience.
जब तक हम हमारे अनुभव में स्पष्टता से देखते नहीं हैं.
Not just getting lost in the words and the discussion.
केवल आप चर्चाओं में या शब्दों में खो मत जाइए.
So, well, what did happened to the Buddha under the Bodhi tree?
लेकिन क्या वाकई में हुआ बुद्ध के साथ बोधि वृक्ष के नीचे?
What did he do?
क्या उन्होंने किया?
You know, he was sitting there under the tree, between the tree and the Mahabodhi temple.
हाँ वो वहाँ बैठे थे जहाँ आज वृक्ष है और महाबोधि मंदिर है उसके बीच की जो जगह है वहाँ बैठे थे वो.
You can see the Vajrasana, the slab put there by Ashoka.
वहाँ सम्राट अशोक जी ने जो वज्रासन रखा है वो आप देख सकते हैं.
That's supposed to be on the very spot where the Buddha sat.
शायद वही जगह है जहाँ बुद्ध बैठे थे.
And so he sat there. Of course, at that time it was just a jungle.
वे वहाँ बैठे थे शायद उस वक्त केवल जंगल था.
And no buildings or anything like that.
कोई भी इमारत वहाँ नहीं थी.
And something happened to him.
और कोई तो भी बात उनके साथ हुई.
Or you could say he did something.
या ऐसा आप कह सकते हैं उन्होंने कुछ किया.
So what is it?
तो वह क्या था?
Fortunately, we have his own first report.
तो सौभाग्य से पहला जो रिपोर्ट था संबोधि के पश्चात हमें मिला.
Those who were on the previous retreat will have been hearing this quite a lot.
तो जो पहले शिविर में मेरे साथ जो लोग थे शायद उन्होंने कई बार इसे सुना होगा.
We heard it last night.
और कल रात शाम को भी हमने इसे सुना.
We're going to go very deeply into these verses.
तो इन गाथाओं में हम गहराई से जाएंगे.
But they are, according to Buddha Ghosha, the words spoken by the Buddha immediately after his awakening.
लेकिन बुद्ध घोष के अनुसार यह पहले शब्द है संबोधि के पश्चात तुरंत बोले गए.
And they're from the Dhammapada.
वे धम्मपद से है.
They're found one or two other places as well.
अन्य एक दो जगह भी वो मिलते हैं.
But they're reported by the Ataka Kata of the commentary on the Dhammapada as being the words spoken by the Buddha under the tree.
जो तो धम्मपद की जो टिप्पणियां है अट्टकथाओं में इसका संदर्भ हमें मिलता है संबोधि के पश्चात बुद्ध ने जो पेड़ के तले बोला या वृक्ष के तले बोला.
And Buddha Ghosha was recording oral traditions that came down to him.
और बुद्ध घोष जो थे वह सभी परंपराओं को लिख रहे थे जो बुद्ध से आई थी.
So it's probably true.
तो ऐसे हम मान सकते हैं कि यह सत्य है.
But there was no video recording, so we don't really know. No tape recorder.
तो ऐसा वीडियो और टेप रिकॉर्डर वहाँ नहीं था.
But they certainly express very clearly what happened.
लेकिन यह वाकई में एक स्पष्ट अभिव्यक्ति देता है कि क्या हुआ.
So I'm going to ask first of all Maitreya Nagarjuna to read them in Pali.
तो मैं मैत्री और नागार्जुन को पूछूंगा सबसे पहले इसे पाली में कहे.
Just because it gives you a flavor of the words that may have been close to those the Buddha used.
क्योंकि यह हमें एक उसका सुगंध देता है बुद्ध ने जो प्रत्यक्ष जो शब्द बोले उसका.
Then I'll read them in English and Maitreya will read them in Hindi.
फिर मैं उसे अंग्रेजी में पढ़ूंगा और फिर मैत्री उसे हिंदी में पढ़ेगा. अनेक जन्मों से मैं गुजरा इस निरंतर चक्राकार संसार में. खोज रहा था मैं गृहकार को लेकिन वह मुझे नहीं मिला. दुखदायक है जन्म पुनः पुनः. ओ गृहकार देख लिया है अब तुझे. अब तू पुनः गृह नहीं बनाएगा. तेरी सभी शहतिरों को मैंने तोड़ दिया है. तेरी गृह श्रेणियों को मैंने ध्वस्त किया है. संस्कारित चित्त को नष्ट किया है. तृष्णा का क्षय प्राप्त कर लिया है.
So there's so much in that poem.
तो इस गाथा में काफी कुछ है.
And it is a poem.
और यह कविता है.
And that's quite important, isn't it? That the first words of the Buddha, as far as we know, were in verse.
तो यह एक कविता है और जहाँ तक हम गाथाओं में जानते हैं यह बुद्ध ने कही है.
And it's based upon an image, a poetic image.
और एक काव्यात्मक रूपक में या काव्यात्मक रूपक में इसे बताया गया है.
I know that a number of philosophers and aestheticians have said that poetry is the highest form of human communication.
तो काफी दार्शनिक लोगों ने और जो सौंदर्य शास्त्रज्ञ है उन्होंने कहा है कि काव्य जो है यह अभिव्यक्ति का उच्चांक है.
Because of course it's beautiful.
क्योंकि निश्चित ही यह सुंदर है.
And it appeals very strongly to the imagination.
और आपके कल्पना से कल्पना को काफी यह भाता है.
And if it's well written, it's got a sort of rhythm which is very pleasing.
और अगर यह सुव्यवस्थित अगर लिखा हो तो इसमें एक रिदम का मतलब एक लय होती है जिसे हम सुनते हैं.
But it's also got deep meaning.
लेकिन इसमें गहरा अर्थ भी होता है.
So that poetry is as communication, that the merging of aesthetic delight with meaning.
तो यह जो काव्य है उस सुंदरता के साथ गहरे अर्थ को संवादित करता है.
And many Buddhist saints and elders and so forth have spoken in verse.
और काफी जो संत थे या महान लोग थे उन्होंने गाथाओं में या अभंगों में यह बातें कही है.
Yes, the Abhangas of Tukaram are a very good example that you Maharashtrians are well familiar with.
तो महाराष्ट्र के लोगों को काफी परिचित होगा तुकाराम के जो अभंग है वह काफी हमसे परिचित है.
And it seems as if in moments of extreme sort of inspiration and insight, quite naturally, a verse expresses itself.
और ऐसे यानी गहरे अनुभव में यह जो शब्द जो है जो फूटते या स्फुटित होते सहजता से आ जाते हैं अपने होठों से.
So we need to listen to it with those ears, the poets, the ear that we listen to poetry with.
तो हमने उस काव्यात्मक कानों से उन कविताओं को सुनना चाहिए.
And I just spent some time looking at the Pali.
और मैंने कुछ समय पाली यानी पढ़ने में बिताया.
I'm not a Pali scholar at all. I've never studied Pali.
मैं पाली को कभी पढ़ा नहीं है और मैं पाली का विद्वान नहीं हूँ.
But just looking at the individual words and looking up their meanings and so forth, I found some very interesting things.
और जब मैं एक-एक शब्द को तोड़कर जब देखता हूँ उनके अर्थों को देखता हूँ तो काफी महत्वपूर्ण बातें मुझे वहाँ मिलती है.
A number of the key words used have double meanings.
तो कभी कभी हम जो मुख्य शब्द जो इस्तेमाल करते हैं उसके दो अर्थ होते हैं.
So that the Buddha is using words that mean one thing and another thing at the same time.
तो कभी बुद्ध जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उसका एक अर्थ होता है और उसके नीचे नीचे कुछ और एक अर्थ होता है.
So that sort of doubles the impact of what he's saying.
और वह अपना जो यानी क्या कहते हैं कि प्रभाव है वह दुगना करता है.
And the layers of meaning in the text.
और काफी जो यानी स्तर है अर्थों के वहाँ होते हैं.
So it's going to take us a while to tease it all out.
तो इसमें वाकई में समय लगेगा कि वाकई में इसका अर्थ क्या है.
But we'll do our best as much as I'm able to help you.
लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे और जितनी मैं मदद कर पाऊंगा उतनी मैं मदद करूंगा.
So first of all, I'll just give you an overview of the whole text and some of the principal meanings.
तो मैं आपको एक मोटा मोटा जो पूरे गाथा का अर्थ है वह दूंगा और फिर मैं उसकी तात्विक बातें बताऊंगा.
And begin to point you at what you need to be looking at in yourself from the text.
और आप अपने आप में इसे देखना शुरू करेंगे कि क्या इस गाथा में कहा गया है.
So the Buddha first of all talks about his own quest.
तो सबसे पहले बात यहाँ बुद्ध जो कहते हैं वो अपनी खोज की जो चाह जिसे हम कह सकते हैं उसके बारे में कह रहे हैं.
And this constant revolving in samsara.
और इसकी बात वो कर रहे हैं कि कैसे वो निरंतर इस चक्राकार संसार में घूम रहे थे.
Actually, the word he uses is going on, faring on.
जो शब्द वो इस्तेमाल करते हैं कि बस चलते जा रहा है निरंतर है ऐसा उसमें भाव है.
Just goes on and on and on, samsara.
संसार जो है बस चलते जा रहा है घूम रहा है फिर रहा है इस तरीके से.
So the interesting thing is the first word is anekajati. संसारं. Yeah.
तो पहला ही जो शब्द है वह अनेक जाति संसारं है.
अनेक जाति, अनेक means not just one.
अनेक का अर्थ यह होता है कि केवल एक ही है ऐसा नहीं है.
So it's not just saying a lot, he's saying it's a sort of a poetic emphasis.
तो यह ऐसा नहीं कह रहे कि बहुत सारा है, यह एक काव्यात्मक जोर उन्होंने दिया है इस पर.
Not just one lifetime, केवल so many.
केवल एक ही जन्म नहीं है ऐसे कई जन्म.
so many lifetimes I've been just going round and round, on and on.
और ऐसे कई जन्मों से मैं निरंतर जा रहा हूँ, निरंतर जा रहा हूँ.
And in fact, the Pali says something like going on, looking.
और पाली शब्द ऐसे कहता है कि बस ये निरंतर चलते जा रहा है और मैं कुछ देख रहा हूँ.
So the Buddha's been on a quest.
तो ऐसा प्रतीत होता है कि बुद्ध किसी खोज में थे.
Traditionally, this is understood as the quest that he entered upon as the monks who made when he met Dipankara Buddha.
तो पारंपरिक तरीके से ऐसा कहा जाता है. What tradition says?
This is the quest he's been on since he met Dipankara as Sumedha.
हाँ, तो जब वे सुमेध करके दीपंकर को मिले तब से परंपरा ऐसी बताती है कि यह खोज चल रही है.
So he's saying that this search that he's been on, it's been many many lifetimes.
तो ऐसा वो कहते हैं कि यह जो खोज है ये कई जन्मों से चली आ रही है.
What he's been doing in that search is looking for the house builder.
क्या उस खोज में कर रहे थे कि वो गृहकार को देख रहे थे.
The one who builds this house that we inhabit.
तो उस घर को जो हम विरासत में लेते आ रहे हैं, लेते आ रहे हैं.
What house is that?
अब ऐसा कौन सा वो घर है?
Well, you could say it's the house of the body.
ऐसा आप कह सकते शरीर का ग्रह है.
That's one of the ways it's traditionally understood.
एक परंपरा से इस तरीके से इसे समझा गया है.
That seems to me too superficial.
लेकिन मेरे लिए यह काफी ऊपरी प्रतीत होता है.
Although clearly it's part of the meaning.
लेकिन निश्चित ही उस बड़े अर्थ का यह एक छोटा सा हिस्सा है.
Because you have to ask what is the body.
क्योंकि आपको फिर पूछना है कि फिर शरीर क्या है.
It's the manifestation, the objectification of our quest for identity.
क्योंकि शरीर आपके पहचान की अभिव्यक्तता है, इसकी वस्तुनिष्ठता है.
So the house is the house of identity.
तो यह जो घर है, यह घर है पहचान का.
I am this.
मैं यह हूँ.
We're going to look much more closely at that because this is one of the essential things we have to recognize and understand.
इसमें हम अधिक गहराई से जाएंगे क्योंकि यह एक मुख्य बात है जिसे हमें पहचानना है.
Because you know, all of you actually live in different shaped houses.
क्योंकि आप सब लोग अलग, आपके यानी जो घर है उसके आकार अलग अलग है.
Some have got two rooms, some have got five.
किसी के पास दो कमरे होंगे, किसी के पास पांच कमरे होंगे.
Every one of us has a different house.
हर किसी के पास आपका अपना अलग अलग घर है.
A different shaped identity.
और उनकी जो पहचान है, उसका जो आकार है, वो अलग अलग है.
Some of us are attached to this thing, some to that thing.
कुछ लोग इस बात से आ सकते हैं, कुछ लोग उस बात से आ सकते हैं.
But some of us say this is me, some of us say that is me.
कुछ लोग कहते हैं यह मैं हूँ, कुछ लोग कहते हैं वह मैं हूँ.
But again and again, the house builder has built a house.
लेकिन बार बार जो गृहकार है वो घर बना रहा है.
So the Buddha has been looking for the house builder.
तो घर जो बुद्ध जो है वो उस वो गृहकार को ढूंढ रहे थे.
And not finding him.
और वे उसे खोज नहीं रहे थे.
He couldn't find the one who built the house.
और वो गृहकार को ढूंढ नहीं पा रहे थे.
Again and again he found himself in a house.
लेकिन बार बार वो जो गृहकार जो है वह घर बना के बिल्कुल तैयार बैठा था.
To put it another way, he was a house.
इस तरीके से ऐसा कह सकते हैं कि वे स्वयं घर थे.
He'd become a house again.
वे फिर से घर बन जाते थे.
And then he just reflects on this whole business.
और फिर यह पूरा जो यानी जो चल रहा है उसके ऊपर उन्होंने चिंतन किया.
Painful is such repeated rebirth.
दुखदायक है जन्म पुनः पुनः.
So he's seen directly that this rebirth is painful.
और उन्होंने अपने प्रत्यक्ष अनुभव से देखा कि पुनर्जन्म जो है यह दुखदायक है.
Yes, for a while your house may be nice and secure and you may have a proper insurance and the rain won't come through the roofs. But for a while it may be not particularly unpleasant.
तो कुछ हद तक हम घर में सुरक्षित होते, बरसात से पानी नहीं आता है, आपका इंश्योरेंस निकाला हुआ होता है और कुछ हद तक यह काफी सुखद सुरक्षित प्रतीत होता है.
But all the time the house is falling down.
लेकिन हमेशा जो घर जो है वह गिर रहा है.
The foundations are made of bad cement.
क्योंकि उसकी जो बुनियाद है यह गलत जो सीमेंट है उससे बनाई गई है.
What you call it? The town council is going to widen the road.
क्योंकि जो मुंसी नगर पालिका है वो आपके रोड को बड़ा कर देगी.
Floods are coming.
और बाढ़ आ रही है.
Something is going to bring that house down.
कोई तो भी ऐसी बात है जो उस गृह को नष्ट करेगी.
There are rats in the house.
वहाँ पे चूहे.
And then there are people living there.
और वहाँ लोग रह रहे हैं.
And those people are, however nice the house is, they're not always nice to each other.
और कितने भी अच्छा घर क्यों न हो वो अपने आप से ठीक नहीं होते.
This pain inevitably bound up with the house.
क्योंकि इस ग्रह से दुख निश्चित है.
Sometimes it's even called the house of pain.
कभी कभी इसे दुख का ग्रह कह सकते हैं.
So the Buddha's been trying to find out who's building this wretched house.
तो बुद्ध यह ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि यह जो भीभत्स या भयानक जो घर है यह कौन बना रहा है.
So you got two forces at work.
तो ऐसा हम कह सकते हैं कि दो बल है जो काम कर रहे हैं.
In this text there are two different processes at work.
तो इस गाथा में हम देखते हैं कि दो भिन्न भिन्न बल काम कर रहे हैं.
There's the force that's building the house again and again and again.
तो एक ऊर्जा है या शक्ति है जो बार बार उस गृह को बना रही है.
What the Buddha calls the house builder.
जिसे बुद्ध गृहकारक कहते हैं. गृहकार कहते हैं.
The constructor.
जो बनाता है, जो ठेकेदार है.
Something, somebody building this house again and again and again.
तो कोई तो भी इस घर को बार बार बना रहा है.
And it's painful.
और यह दुखदायक है.
So there's also a questing for the solution to this.
और वहां पे एक यानी क्या कह सकते प्रबल चाह है. केवल इच्छा नहीं, एक प्रबल चाह है कि कौन इसे बना रहा है, इसे खोजने की.
And it's very important for us in these days to identify both forces.
और यह हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है कि इन दोनों बलों को हम पहचाने.
If we hadn't got the force that's building the house, if there wasn't a house builder in our own case, we wouldn't be here.
तो अगर वह बल नहीं होता गृहकारक का तो हम आज यहाँ नहीं होते.
But we need to identify that in ourselves.
लेकिन हम में इसे पहचानने की जरूरत है.
There's a force that keeps on creating the house.
और एक ऐसा बल है जो तुरंत या निरंतर बार बार यह घर बना रहा है.
But we definitely wouldn't be here if there wasn't something in us wanting to get out of it.
लेकिन हम सब लोग यहाँ नहीं होते अगर हम में वह खोज नहीं है, चाह नहीं है उस ग्रह से मुक्त होने की या बाहर निकलने की.
Maybe it's not enough, maybe it's not strong enough, maybe it's not clear enough, but it's there.
हो सकता है यह स्पष्ट नहीं हो, पर्याप्त नहीं हो, हमारी शक्ति उतनी नहीं हो, लेकिन कुछ तो भी खोज है या हम में वह चाह है.
Otherwise we wouldn't be here. We wouldn't be order members.
नहीं तो हम सब लोग संघ सदस्य नहीं होते, धर्मचारी नहीं होते, यहाँ नहीं होते.
We've been ordained because there is something of that quest in us, at least at the effective level.
कम से कम प्रभावी स्तर पर वह जो खोज है वह हम सब में है.
So there's two forces.
तो वहाँ दो बल काम कर रहे हैं.
The one that's just creating the house of pain again and again and again.
वहाँ पे एक घर है दुख का जो बार बार इसे बना रहा है.
And the other that's seeking the solution.
और दूसरा जो है वह उसके सुझाव को या उसके मुक्तता को मुक्ति को खोज रहा है.
Wants to get out of the pain, can see the pain so clearly.
वो उस दुख को साफ देख पा रहा है और उससे वो मुक्त होना चाहता है.
So it'd be good to try to identify those in your own experience.
तो अपने अनुभव में इसे पहचानना जरूरी है.
We'll get clearer about them as the days go by, but be good to at least start by trying to notice them at work in yourself.
तो जैसे जैसे हम गहरे जाएंगे हम उसे स्पष्टता से देखेंगे, लेकिन इसे पहचानना जरूरी है.
Because putting your weight on one rather than the other is what makes the Dhamma life work.
इस बार या उस ओर जब हम हमारी शक्ति ज्यादा डालते हैं या बल ज्यादा डालते हैं उसी से ही हमारा धम्म जीवन चलता है.
Which train are you going to get on? the house building train or the seeking train.
तो अब आप पे निर्भर करता है कि आप गृह कारक की ट्रेन में बैठते हैं या
the one that's seeking.
या जो खोज रहा है वो खोज की ट्रेन में आप बैठते हैं.
One train just has a circular track, just goes round and round and round and doesn't go anywhere.
एक ट्रेन का जो ट्रैक है वो चक्राकार है, वो ट्रेन जो है घूमते रहे, रेलगाड़ी घूमते रहती, कहीं नहीं जाती.
यू गेट ऑफ एट द स्टेशन एंड देन द ट्रेन कम्स एंड यू गेट ऑन अगेन एंड यू कम बैक टू द सेम स्टेशन.
तो आप गाड़ी में बैठते हैं उस स्टेशन से, वो रेल चलती है, घूमती है और उसी स्टेशन पे आ जाती है.
एंड द अदर ट्रेन व्हिच गोस टू निर्वाणा.
और दूसरी जो ट्रेन है वो निर्वाण की ओर जाती है.
इट मेक्स प्रोग्रेस, इट गोज समवेयर.
वह प्रगति करती है, कहीं जाती है.
सो दीज टू फोर्सेस आर समथिंग दैट वी नीड टू आइडेंटिफाई इन आवरसेल्व्स.
तो यह दो बल है जो हमने हमारे भीतर देखने चाहिए.
एंड सो द बुद्धा गोज ऑन, हाउस बिल्डर यू आर सीन.
फिर बुद्ध कहते हैं कि ओ गृह कारक, मैंने तुझे देख लिया है.
एंड इट्स अ शाउट ऑफ ट्रायम्फ. Victory.
और यह जो गर्जना है, यह जीत का घोष है.
What the Greeks called a paean.
ग्रीक उसे पियन कहते हैं.
It's the shout that you give when you've gained victory over the enemy.
तो जब आप किसी दुश्मन को जीत लेते हैं तो वो जो घोष है वो घोष आप देते हैं.
So the Buddha gives his shout of victory.
तो बुद्ध इस प्रकार से अपना विजय घोष देते हैं.
And if you listen carefully, you can still hear it under the Bodhi tree.
और अगर आप इसे स्पष्टता से देखते हैं तो आप उसे बोधि वृक्ष के नीचे देख सकते हैं.
You can feel it vibrating in the air still, the echo of that cry of victory.
और यह जो गूंज है, उस जीत की गूंज, उस घोष की गूंज आपको सुनाई देगी अगर आप वहां सुनेंगे तो, वृक्ष के तले.
He's seen the house builder.
उन्होंने गृह कारक को वहां देखा.
Because it's no good just I don't want to be reborn. It's no good. It's not enough.
क्योंकि मैं पुनर्जन्म नहीं लेना चाहता. केवल इतना ही पर्याप्त नहीं है.
It's no good just to be fed up with it.
और इससे यानी परेशान हो जाने से वह पर्याप्त नहीं है.
You've got to see what is making it happen.
और हमें यह देखना है कि कौन सी बात है जो इस ग्रह को बना रही है.
It's no good just cutting the poisoned plant off above the ground.
वो जो जहर का जो पेड़ है उसे जमीन के ऊपर से काटना पर्याप्त नहीं है.
You've got to get down to its roots and pull them up.
उसके जो जड़ें हैं उन जड़ों तक हमें पहुंचना पड़ेगा.
So he's seen the constructor.
तो उन्होंने जो गृह निर्माता है, जो बनाता है, उसे देखा.
And so because he's seen the constructor, he can't work anymore.
अब चूंकि उन्होंने उस गृहकार को देख लिया है, अभी वो काम नहीं कर पा रहा है.
Because the constructor succeeds in building our house because we don't see him.
तो गृहकार घर बनाने में कामयाब इसलिए हो जाता है क्योंकि हम उसे देखते नहीं है और वो अपना घर बना लेता है.
We don't feel this force inside us.
हम वो जो बल है, हमारा जो भीतरी बल है, उसे हम देख नहीं पाते.
We're constantly fooled by life.
हम जीवन से हमेशा ही बेवकूफ बनते जा रहे हैं.
We think, oh, what a nice house.
हम सोचते वाह कितना सुंदर घर है.
Oh, we think, what a horrible house.
और फिर हम सोचते कितना बुरा घर है.
But we still think it's a house and that it's ours.
और उसके बावजूद भी हम ऐसा सोचते कि यह हमारा घर है और यह मेरा है.
We don't know why it happened.
हम यह नहीं जानते कि यह क्यों होता है.
So if it's a bad house, we just want a better house.
अगर यह बुरा घर है तो हमें अच्छा घर चाहिए.
Or if we want to get out of it, we want to just have blank.
और अगर हम उससे अगर मुक्त होना चाहते हैं तो हम केवल सीधा सा घर चाहते हैं.
But we don't know why the house is coming about.
लेकिन हम यह नहीं जानते कि क्यों वह घर आ रहा है.
And the Buddha's been asking why, why, why.
और बुद्ध बार बार पूछते हैं कि क्यों, क्यों, क्यों.
Why is this house coming about again and again?
क्यों यह घर बार बार आ रहा है.
That's his quest.
यह उनकी खोज है.
And now he's seen.
और अब उन्होंने देख लिया है.
So the house builder can't work.
तो अभी यह जो गृहकार है यह काम नहीं कर पाएगा.
Mara has to slink away with his tail between his legs.
तो मार जो है उसको अपनी पूछ दबाकर या दुम दबाकर भागना पड़ेगा.
You're never going to build me a house again.
फिर से आप यह ग्रह नहीं बनाएंगे.
Your rafters are all broken.
आपकी जो शहतीर है वो सारी शहतीर अभी टूट चुकी है.
And it's very interesting, the word for rafters actually means ribs.
शहतीरों का यहाँ जो अर्थ दिया गया है जो हमारी ये फसलियां होती है उस फसलियों से है.
I know, but in Marat, in Pali it was fasuka. Anyway, never mind. But in English we speak of the ribs of a ship, which are the ones that come up from the keel.
तो अंग्रेजी में उसे जो जहाज की फसलियां जो होती है ना जो उसके बनाती है उसे कहते हैं.
So it's the ribs of a house, the ones that come down.
तो वो जो घर की फसलियां है जो ऐसी आती है.
But the word, what is it in Pali? Fasuka. Fasuka in Pali, Fasuka.
Pali में से Fasuka कहते हैं जो मैं फसलियां कह रहा हूँ.
So it means the ribs, but it also means pleasure.
Fasuka का दूसरा अर्थ भी है सुख.
So the Buddha is playing with words, yeah?
Buddha un shabdon ke saath yani khel rahe hain.
So your ribs are broken, the structure of the house is destroyed.
To aapki jo fasliya hai wo fasliya dhvast ho gayi hai.
But also the pleasures that have brought you back again and again are destroyed.
तो वो जो सुख भी है जो आपको बार बार उसमें वापस ला रहा है उसको भी मैंने नष्ट किया है.
If you like the lying pleasures.
ऐसा आप कह सकते हैं कि जो झूठ बोलने वाला जो सुख है झूठा सुख जो है.
There's very small superficial pleasures that just lead to pain.
यह ऐसा छोटा सा सुख जो आपके बहुत बड़े यानी दुख के खाई में डाल देता है.
So those are destroyed.
मैंने उसको नष्ट किया है.
So no longer can you be fooled by pleasure.
तो ऐसे सुखों से अभी मैं मूर्ख नहीं होऊंगा.
That sort of superficial kama sukha.
वह बहुत ही ऊपरी स्तर का काम सुख है.
And then the your ridgepole is shattered.
और तुम्हारी आपकी जो शहद यानी ग्रह की जो शहतीरे है उसको मैंने ध्वस्त किया है.
What we, in English we call the roof beam, the one that goes across and that the rafters lean on.
तो वो जो शहतीरों के आधारों पर जो एक केंद्रीय जो बीम होता है उसको जिसे हम गृह श्रेणी कहते हैं.
Well, that's broken.
और उसको मैंने तोड़ दिया है.
The word that means the roof beam also means lies.
और वो गृह शनि को लाइज मीन्स लाइन
फॉल्सहुड
जो गृह शनि है उसे भी हम झूठ कह सकते हैं. झूठ के बजाय जो देखते हैं लेकिन वो सत्य नहीं होता. हाँ भ्रम कह सकते हैं. भ्रम है उसे वो कहते हैं.
So a play on words, which is very interesting.
तो यह शब्दों का खेल है उसको हमने यानी ठीक से देखना है.
And of course, it's even more of a play because ribs is both the ribs of a house, but the ribs of the body.
तो वो जो फसलें हैं, फसलियां हैं, वो जो फसलियां वो घर की भी है, लेकिन हमारे शरीर की भी है.
And it means also these petty pleasures.
और इसका अर्थ यह है कि यह जो झूठे जो 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 सुख है वह
It's destroyed.
उसको मैंने नष्ट किया है.
And yes, the central beam is gone.
और जो गृह श्रेणी है उस गृह श्रेणी को मैंने तोड़ दिया है.
But the deceit, the lies that the house builder builds the house from is gone.
और वो जो धोखा है जिससे वो गृहकार गृह बना रहा था उसको मैंने नष्ट किया है.
Because the house depends upon a lie.
क्योंकि वो जो घर जो है यह उस भ्रम के ऊपर या उस झूठ के ऊपर बुनियादित है आधारित है.
What lie is that?
अब वो झूठ क्या है?
Everything is permanent.
वह झूठ यह है कि हर चीज नित्य है.
There really is an Atman.
वाकई में वहाँ आत्मा है.
There is possible to find a house that will be completely safe, completely happy.
ऐसा मानना कि ऐसा घर मुमकिन है बनाना जो पूरी तरह सुरक्षित है और मुझे पूर्ण सुख देगा.
That's the lie.
वह झूठ है.
That's the lie that the house builder builds the house off.
इसी झूठ के ऊपर वो गृह कारक जो है वह घर बनाता है.
It's good the phrase lie, isn't it? Because we usually say, oh, ignorance.
उसे अक्सर हम अज्ञान कहते हैं, लेकिन यह भी अच्छी अभिव्यक्ति है जिसे हम झूठ कह सकते हैं या भ्रम कह सकते हैं.
But I find the phrase lie quite powerful here.
लेकिन यहाँ जो अभिव्यक्ति है झूठ या भ्रम यह मुझे काफी प्रबल महसूस होती है.
In a way, we tell ourselves a lie.
एक दृष्टिकोण से हम अपने आप को यह झूठ बताते हैं.
There is really something permanent. That's the lie we tell ourselves. Yeah.
वाकई में हम अपने आप को यह झूठ बताते हैं कि यह बात नित्य है.
I am permanent.
मैं नित्य हूँ.
That's the lie.
वह सबसे बड़ा झूठ है.
If I can just get this and this together, I will be completely happy.
अगर मुझे ये बातें अगर पूरी तरह मिल गई तो मैं पूरी तरह सुखी हो जाऊंगा.
If they would stop doing that, I would be completely happy.
अगर उन्होंने वैसा करना रोक दिया तो मैं पूरी तरह सुखी हो जाऊंगा.
These are the lies that we tell ourselves.
तो यह झूठ है जो हम अपने आप को बताते हैं.
And the house builder feeds us these lies.
और जो गृहकार है इन झूठों से हमें भरते रहता है.
And from that we build this house of suffering.
और उससे हम हमारा जो दुख का जो गृह है उसे बनाते हैं.
So the Buddha has seen through all that.
तो बुद्ध ने इसके पार या इसे भेद कर देखा.
Even our bodies are a manifestation of that lie.
हमारा शरीर भी उस झूठ की अभिव्यक्ति है.
Because we bought the lie in the past, we create a body in the future.
क्योंकि हमने क्या किया गत यानी भूतकाल में हमने इसे उधार लिया और
फ्यूचर व्हाट हैपेंस वी गेट अ बॉडी इन द फ्यूचर
और भविष्य में हमें शरीर मिलता है.
सो ऑल्दो इट्स अ पोएटिक वे ऑफ लुकिंग एट इट इज क्वाइट पावरफुल इजंट इट.
तो यह काव्यात्मक रूप से इसे देखना है लेकिन यह काफी प्रबल है.
टू थिंक दैट इट्स नॉट दिस ओ डियर वी आर इग्नोरेंट नोबडी टोल्ड अस वी डोंट अंडरस्टैंड.
तो हम ऐसा सोचते हैं कि मुझे किसी ने बताया नहीं हम समझ नहीं पाते हम ऐसे कैसे समझेंगे.
Nobody told me, why didn't they tell me?
उन्होंने मुझे पहले क्यों नहीं बताया उन्होंने मुझे ये समझाया क्यों नहीं.
It's not my fault.
यह मेरा दोष नहीं है.
No, it's a lie that we're telling ourselves.
यह झूठ है जो हम अपने आप को बताते हैं.
And all the time life is saying it's a lie, it's not true, it's not true.
और हमेशा ही हम यह झूठ बताते हैं यह सत्य नहीं है यह सत्य नहीं है यह सत्य नहीं है.
But we say no, it's true.
लेकिन हम कहते हैं नहीं यह सत्य है.
So yes, that's destroyed. The Buddha's seen through the house builder. It's destroyed.
तो उस गृहकार को बुद्ध ने देखा और उसे नष्ट किया.
Then the as a result of that, the conditioned mind has been destroyed.
और उसका जो परिणाम है उसका जो विपाक है वह क्या होता है कि जो संस्कारित चित्त है वह नष्ट होता है.
One way of reading what the Pali is that it's that the mind has been deconditioned.
एक दृष्टिकोण से अगर पाली के दृष्टिकोण से देखा जाए तो मन जो है वह असंस्कारित हो चुका होता है.
It's been freed from conditions. You could even interpret it like that.
हम ऐसा इसका ऐसा भी विश्लेषण कर सकते हैं कि संस्कारितता से यह मुक्त हुआ होता है.
And we'll have quite a bit to say about that later.
और इसके बारे में मैं कुछ यानी और अधिक कहूंगा बाद में.
To really understand what this means is very profound indeed.
इसका अर्थ क्या है यह काफी यानी महान है.
And then the punchline.
और फिर बाद में है.
Do you have like a joke, and at the end of the joke, there's a punchline.
और यह है फिर जोर का झटका.
And the punchline is the cessation of craving has been attained.
और यहाँ फिर जो है जो जो तृष्णा का जो क्षय है उसे प्राप्त कर लिया है.
So we now know who the house builder is.
अब हम जानते हैं कि अब गृहकार कौन है.
It's tanha, trishna.
यह तृष्णा है.
And again, we'll have a lot to say about that.
और फिर से इसके बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है.
So Not that we don't know a lot about it already.
अब ऐसा नहीं है कि हम इसके बारे में नहीं जानते.
But we only know the surface of it.
लेकिन केवल हम उसकी ऊपरी सतह जानते हैं.
This is right down to the bottom of craving.
क्योंकि यह जो तृष्णा है, यहाँ जिस तृष्णा की मैं बात कर रहा हूँ, यह काफी गहरी बात है.
This is at the level of the ashravas, if you like.
ये आश्रव जो है, उनके स्तरों की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ.
In fact, the word for the cessation of craving is tanha kaya.
और जो इस तृष्णा के लिए जो पाली में शब्द प्रयोग कहा गया है वह तन्ना खया ऐसा कहा गया है.
एंड ऑफ कोर्स इट्स द आश्रव खया ज्ञान दैट इज
और हम जानते हैं कि आश्रव खय आसव खय ज्ञान को
दैट्स इन द पाली द फाइनल स्टेज ऑफ द स्पाइरल पाथ.
तो यह जो ऊर्ध्वगामी चक्राकार मार्ग है उसका अंतिम चरण है.
सो इट्स नॉट जस्ट गिविंग अप दिस इट्स नॉट जस्ट गिविंग अप दिस क्रेविंग और दैट क्रेविंग
केवल इस तृष्णा को या उस तृष्णा को ही त्यागना या देना नहीं है.
इट्स क्रेविंग एट इट्स रूट.
यह जो तृष्णा इसके बिल्कुल जड़ में भीतर नीचे
दैट स्टॉप्ड
वह नष्ट हुई है या रुक गई है.
सो नो हाउस बिल्डर
तो फिर गृहकार नहीं है.
नो हाउस बिल्डर नो हाउस
अब हाउस गृहकार नहीं है तो गृह भी नहीं है.
एंड सो द क्वेस्ट दैट द बुद्धा हैज बीन ऑन हैज बीन एंडेड
और जिस खोज पे बुद्ध थे वह समाप्त हो गई है.
He's seen who built the house.
उन्होंने देखा कि गृहकार कौन है.
So this is the broad outline of the text.
तो यह गाथा का मोटा मोटा यानी उसका आकार है या लाइन है.
We've gone a little bit deeply even in going through it superficially.
ऊपर ऊपर ही देखते हुए हम काफी इसमें गहरे चले गए.
But we'll start to look more deeply at each of the different elements in it.
तो लेकिन इसके अलग अलग जो आयाम है उनको हम देखेंगे.
But what I'd like you to do today, and I'm sure that you've got some inkling of this already, is to look at these two forces.
तो हम इन दो बलों को यानी आप अपने चर्चाओं में देख सकते हैं.
If you like, it's the gravitational pull of the conditioned, the gravitational pull of the unconditioned.
अगर कहने के लिए ऐसा भी आप कह सकते हैं कि जो संस्कारितता का गुरुत्वाकर्षण है और असंस्कारितता का जो गुरुत्वाकर्षण है वह.
You're all familiar with that.
आप सब लोग इससे परिचित हैं.
So you the pull that drives you on in life.
तो यह जो जोर है या जो बल है जो हमें जीवन में चलाता है
जस्ट फ्रॉम क्रेविंग टू क्रेविंग फ्रॉम लाइफ टू लाइफ
एक तृष्णा से दूसरी तृष्णा 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 चलते जाती है.
दैट्स वन फोर्स
यह पहला बल है.
एंड ऑफ कोर्स इट डजंट मीन जस्ट लाइफ टू लाइफ इवन विद इन वन लाइफ देयर आर सो मेनी लाइव्स.
तो यह केवल एक जीवन से दूसरे जीवन में ऐसा नहीं है. इसी जीवन में हम बार बार इस तृष्णा को बनाते हैं.
इवन इफ इन वन डे देयर आर सो मेनी लाइव्स
एक दिन में ही ऐसे कितने जीवन हम जी लेते हैं.
ऑल द टाइम वी ड्रिवन ऑन बाय द हाउस बिल्डर
हमेशा ही इस गृहकार से हम चलित होते हैं.
इवन इन वन मिनट देयर आर सो मेनी हाउसेस बिल्ट
एक मिनट में ऐसे कितने हम घर बना लेते हैं.
सो देयर इज दैट फोर्स
तो यह वह बल है.
Try and identify that within yourself.
उसे आप अपने भीतर पहचानने की कोशिश कीजिए.
And then there's this quest.
और वहाँ पे फिर वो चाह है.
The feeling that there's something not seen.
तो ऐसा भाव जो कुछ तो भी यानी देखा गया नहीं है.
It's a sort of positive restlessness.
यह एक विधायक अस्वस्थता है.
And we'll have a lot more to say about that.
और उसके बारे में अभी बहुत कुछ कहा जा सकता है.
But try and see both these in yourselves.
तो यह दोनों चीजें अपने भीतर आप देखने की कोशिश कीजिए.
And then we'll get closer to the Bodhi tree.
और फिर हम उस वृक्ष के करीब आएंगे.
The Buddha was obviously extremely conscious of these as he sat down.
बुद्ध इसके बारे में यानी गहराई से सजग थे जैसे ही वो वहाँ बैठे.
He was intensely conscious of the pain of repeated rebirth.
तो जो पुनः पुनः जन्म जो पीड़ादायक है उसके बारे में वो गहराई से सजग थे.
But he was on fire with that quest for the house builder.
लेकिन वह जो खोज है गृहकार को खोजने की उसकी ज्वाला में वो मानव तड़प रहे थे उसको वो ढूंढ रहे थे.
So we need to have the same kind of intense awareness of both forces.
उस जुनून में वो थे और इस तरीके का जो गहराई से जो सजगता है उसकी हमें आवश्यकता है.
And yes, if you can just sort of identify those at least in principle in your experience, well, tomorrow we'll begin to refine our understanding.
तो कम से कम तात्विक रूप से अगर हम इसे स्पष्ट होंगे तो हमारी समझ को हम अधिक सूक्ष्म कर पाएंगे.